ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करने और ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने प्रौद्योगिकी की ताकत और सुशासन के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं। श्री मोदी ने यह टिप्पणी माई जीओवी इंडिया के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करने के बाद की। पोस्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रामीण भूमि डिजिटलीकरण भारत में कृषि के भविष्य को नया आकार प्रदान कर रहा है। इस परिवर्तनकारी कदम से भूमि विवादों को कम करने और भूमि प्रबंधन में सुधार के अतिरिक्त पारदर्शिता सुगम्यता आई है और ग्रामीण समुदाय सशक्त बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े धन शोधन मामले में 300 करोड़ रुपए की 142 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य कई व्यक्तियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। निदेशालय ने कहा है कि मामले में ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने MUDA द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ से अधिक भूमि के बदले में अपनी पत्नी के नाम पर पौश इलाके में 14 स्थानों पर जमीन के रूप में मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। निदेशालय ने यह भी दावा किया है कि इन 14 स्थानों के अलावा MUDA ने रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में बड़े पैमाने पर जमीनें अवैध रूप से आवंटित की। इन व्यवसायियों ने उन्हें भारी लाभ पर बेच दिया और बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी अर्जित की। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति आज पटना में विचार विमर्श करेगी। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में यह समिति राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से देश में पंजीकृत लाखों वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल 1,521 नामांकन पत्र भरे गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन भरने के अंतिम दिन कल 680 नामांकन पत्र भरे गए। नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का सामना भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। आयोग के अनुसार कालकाजी सीट पर कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला भाजपा के रमेश विदुड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा से है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में सियालदह की अदालत आज फैसला सुनाएगी। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने इस मामले में संजय राय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। दूसरी ओर पीड़िता के माता पिता, जूनियर डॉक्टरों और समाज के विभिन्न वर्गों ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि CBI इस मामले में किसी और व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। इनका मानना है कि पिछले वर्ष अगस्त में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या में अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे कुंभवाणी समाचार बुलेटिन महाकुंभ से नगर में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया गया। इस पहल से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को मेले से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।